हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 में हूँ आपकी अपनी होस्ट दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मेरे साथ बैठी हैं मिसेस इंदिरा किलम और मिसेस सविता सयाल और आज हम बात कर रहे हैं अहम पर। जी हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा और शायद जब ये लोगों की जिंदगी में आता है तो उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी में ये आता है तो बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं होता, और जब ये उनकी जिंदगी से जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। मैं बात कर रही हूँ ईगो की, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग इंसान तक है, और इस बारे में करेंगे हम बहुत सारी बात। लेकिन तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में मिसेस सविता सयाल और मिसेस इंदिरा किलम का।
धन्यवाद
धन्यवाद भावना जी।
अब बात ये करते हैं कि जी ईगो चीज क्या होती है, तो सबसे पहले सवाल जानना चाहूंगी मिसेस किलम से कि ये ईगो होता क्या है।
मैं, मेरा और मुझे, जब ये तीन शब्द मन में आ जाते हैं तभी ईगो का जन्म होता है। लेकिन मनुष्य जन्म के साथ ही ये शब्द लेके आता है, कहीं ना कहीं उसे अपने बारे में, अपने जो उसके संबंधी हैं उनके बारे में, या जो उसका अपना है उसके बारे में जो सोच विचार होता है, वहाँ वो अहम की भावना जरूर आती है और मनुष्य में ये अहम अवश्य होता है। लेकिन ये अहम किस रूप में है, कहाँ है, कितना है, इसकी सीमा क्या है, यही एक मनुष्य के जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। कबीर दास ने एक जगह कहा है, प्रेम ना खेती नीपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। भगवान का प्रेम अपना शीश देकर, शीश का अर्थ है अहंकार, जब आप उसका त्याग करेंगे तभी आपको वो भी प्राप्त होगा। तो ये अहंकार के बारे में हमको जानना समझना बहुत आवश्यक है।
अब मैं जानना चाहूंगी मिसेस सविता सयाल से, सविता जी आपके नजरिए में अहम क्या है?
भावना जी, जो अहम अहम जिसे अहंकार भी कहते हैं जी, उसमें मनुष्य केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देता है या वो अपने को महत्व देता है, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता, यानी उसे लगता है वो औरों से सुपीरियर है।
जी
देखिए, अहम और स्वाभिमान आपस में बहुत जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं।
जी
स्वाभिमानी यदि व्यक्ति है तो वो पॉजिटिव साइड है आपके अहम भाव की
जी,
लेकिन अगर आप अहंकारी हैं तो नेगेटिव साइड है उसी अहम की। और ये मानने की बात है कि अहंकार से कभी भी कोई व्यक्ति फलित नहीं हुआ, जीवन में ऊंचा नहीं उठ पाया। यहाँ गंभीर साहब की लिखी हुई एक छोटी सी रुबाई मुझे याद आ रही है, आप इजाजत दे तो मैं चार लाइनें पढूं।
जी जरूर।
अहम तो आदमी को खुदा से तोड़ता है, अहम तो आदमी को खुदा से तोड़ता है, जहाँ का कोई रिश्ता नहीं जिसे यह जोड़ता है, यानी अहंकारी व्यक्ति का किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता।
जी
अगर जुड़ता है तो कुछ दिन के लिए जुड़ता है। आगे सुनिए भावना जी, ना जाने क्यों तमाम उम्र लोग इसे पालते हैं, ना जाने क्यों तमाम उम्र लोग इसे पालते हैं, यह तो चाहने वालों के दिलों को भी मोड़ता है।
जी
यानी अहंकार अहम, अगर आप हमारा इतिहास देखें तो पूरा महाभारत का युद्ध जो हुआ उसका अगर बीज था वो अहंकार ही था, अहम भाव ही था, इसलिए बहुत नुकसान हो सकते हैं इस अहम भाव को पालने से।
कहा जाता है अहंकार तो किसी राजा का भी कभी नहीं रहा, और वो भी उसके कारण हमेशा ही प्रॉब्लम में रहा है या फिर हमेशा से ही उसने हार ही देखी है। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ईगो का एक बहुत ही अलग नजरिया है, यानी लोग आजकल ईगो को पालते हैं, और वो इसलिए पालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। ईगो एक ऐसा शब्द जो आप सभी की जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आया होगा, और ईगो के बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें पता कैसे लगे कि किसी इंसान में ईगो है या फिर वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है, या कहिए चोली दामन का साथ है। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं एक ईगोइस्टिक व्यक्ति के।
देखिए भावना जी, अगर आप अहम की बात करें, इसके साथ बहुत से शब्द जुड़े हुए हैं, अहंकार, अभिमान, घमंड, स्वाभिमान, गरूर, ये बहुत से शब्द हैं जिनमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है
जी।
कुछ आपको पॉजिटिव रूप में दिखाते हैं, आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और कुछ आपको बहुत नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रूप में दिखाते हैं
जी।
अगर आप स्वाभिमानी हैं तो वो आपका अपने ऊपर ऐसा गर्व है जो बहुत उचित है, जो करना बहुत जरूरी है। यहाँ स्वाभिमान का अर्थ अपने ऊपर घमंड नहीं है, यहाँ इसका अर्थ है अपने ऊपर ऐसा अभिमान करना जो आपकी अच्छाइयों के कारण आप में है
जी।
अगर आप अहंकार से भरे हुए हैं और आप दूसरे को हे समझते हैं
जी,
दूसरे के लिए आपके मन में कोई भावना, प्रेम, रेस्पेक्ट, श्रद्धा, आदर नहीं है, वहाँ आप अहम से भरे हुए हैं, वहाँ आपके मन में दूसरे के लिए कोई ऐसा प्रेम भाव नहीं है कि आप उसकी भी बात को सुन सके
जी।
विशेष रूप से अगर हम संबंधों को देखें, अब कैसे पता चले कोई व्यक्ति अहंकारी है या उसे अपना गर्व है, कैसे समझ आए? जब व्यक्ति में कोई हीन भावना होती है, जब वो चिल्लाकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है
जी।
जब वो ऊंची आवाज पर दूसरे पर दबाव डालना चाहता है और वो ये समझता है कि चीखने से मेरी जीत होगी, तब हम ये समझते हैं कि वास्तव में वो अहंकारी होता है। कहीं ना कहीं उसकी कुंठा उसे चीखने के लिए मजबूर करती है, कहीं ना कहीं उसकी कोई कमी दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए उसे अहंकारी बना देती है और वो अपने आप को न स्पष्ट करते हुए अपने अहंकार को ही दूसरे पर ढाल देता है, दिखा देता है और सामने वाला समझ जाता है कि ये उसका अहंकार है
जी।
अगर हम रामायण में से एक पात्र लें बाली को, बाली बार बार चीखता था जिस समय सुग्रीव क्यों बार बार युद्ध में हार जाता था
जी,
क्योंकि बाली उसके सामने सिर्फ चीखता था, चिल्लाता था, उसका आधा बल जो था सुग्रीव का वो समाप्त हो जाता था
जी।
उसकी चीख चिल्लाहट से वो ये नहीं समझ पाता था कि वो चीख कर मुझ पर क्या प्रभाव डाल रहा
जी।
एक प्रसंग रामायण में आता है, सीता स्वयंवर में जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी वहाँ आते हैं
जी।
और बार बार वो लक्ष्मण के साथ ये संवाद करते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तो जो उनका अहम है वो वहाँ आड़े आता है। परशुराम जी स्वयं ईश्वर अवतार है लेकिन उनका अहम जो है वहाँ दर्शाया गया कि अहंकारी व्यक्ति किस प्रकार से चीखता है। वहाँ बार बार परशुराम जी चीखते
जी।
तो वहाँ वो दिखाया गया कि एक अहंकार किस प्रकार से, व्यक्ति जो अहंकार में जब होता है वो किस प्रकार चिल्लाता है, वो एक प्रतीक हमें वहाँ दिखाया गया। तो इस प्रकार से जो अहंकारी मनुष्य है वो दूसरे को कभी ऊपर उठने नहीं देना चाहता
जी।
ना उसमें समर्पण की भावना है, ना उसमें त्याग की भावना। अहंकार का त्याग ही वास्तव में जो जरूरी है, वही सौंदर्य है मनुष्य का, लेकिन आज हमारे पास वो नहीं है
जी। अगर बात करें पेशेंस की तो वो तो आज के जमाने में बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन अगर बात करें कि अगर किसी में कोई कमी है और वो उसको एक्सेप्ट करे तो ये चीज भी आज के टाइम में बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी अगर किसी इंसान में कोई भी इन्फीरियोरिटी है तो वो उसको एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बनाकर यानी दूसरे को ये जताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्रतिभावान हूं, जो कि सबसे बड़ी परेशानी है। सविता जी आप मुझे बताइए कि क्या सिम्टम्स होते हैं आपके नजरिए में एक ऐसे इंसान के जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होता है?
देखिए इंदिरा जी ने काफी कुछ क्लियर किया है और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि अहंकारी व्यक्ति जो है उसके दिमाग पे एक प्रकार का पर्दा पड़ा होता है, उसको अपने बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है
जी।
देखिए स्वाभिमानी व्यक्ति को पता होता है मेरे में ये गुण है, जबकि अहंकारी व्यक्ति में वो गुण नहीं भी होते तो भी वो यही मानता है अपने बारे में कि उसमें ये गुण है और वो किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता
जी।
अहंकारी व्यक्ति अपना नुकसान कर लेते हैं लेकिन वो झुकते नहीं
जी।
इसके लिए एक बचपन में हमारी माँ एक बनिए और पहलवान की कहानी सुनाया करती थी
जी।
कि एक पहलवान की बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, तो एक बनिए को पता था कि ये जो पहलवान है वो बहुत ही अहंकारी है
जी।
तो उसने उसको समाप्त करने के लिए दिमाग लगाया। उस बनिए की भी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, तो वो कहता था उसको तुम पहले मूछें कटवाओ, और पहलवान कहता था तुम पहले कटवाओ। तो बनिए ने बोला तुम जाओ, तुम अपने घर में अपने सारे परिवार को मार आओ, तब मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा
जी।
तो पहलवान क्योंकि बहुत अहंकारी था, उसने परिवार की भावनाओं की परवाह ना करते हुए उसको अपने परिवार को मार दिया। ये हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी। और जब वो वापिस आया तो उसने बनिए को कहा अब तुम अपनी मूछें कटवाओ। वो कहता कटवानी क्या, मैं अपनी मूछें झुका लेता हूँ, या मूछें कटवाने में मुझे क्या फर्क पड़ता है, वास्तव में नुकसान किसका हुआ, पहलवान का। बनिए ने उसी टाइम बिना किसी अहंकार के अहम भाव को रखते हुए अपनी मूछें कटवा ली। तो हमारी दादी उस टाइम हमें ये बताना चाहती थी कि अहंकारी व्यक्ति अपना नुकसान करते हैं अहंकार में आकर, इसलिए विनम्र होना चाहिए। आप देखिए वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं
जी।
तो फलदार वृक्ष हैं वो झुकते हैं, जो गुणकारी व्यक्ति हैं वो उनमें अहंकार नहीं होता, वो विनम्र होते हैं
जी।
लेकिन जो अहंकारी होता है वो कभी भी झुकता नहीं।
लेकिन परेशानी तब आती है जब आज के टाइम में रिलेशंस में एक ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारा अहम है और एक ऐसा इंसान जो बहुत विनम्र है वो उसे टाइम बर टाइम परेशान करता है और रिलेशंस की जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। और मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स ऐसे रिलेशन की जो सबसे इंटीमेट, सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ट्रस्टवर्दी होता है, वो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। और अक्सर मैंने देखा है कि ईगो के कारण हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के डिवोर्स केसेस का तो रेट बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ के साथ आपसी प्यार का रेट बिल्कुल घट गया है। आज के टाइम में ईगो से हर किसी का वास्ता पड़ता है, लेकिन किसका किस तरीके से वास्ता पड़ता है ये शायद हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, और वो उसको कैसे हैंडल करता है ये भी बिल्कुल एक इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे टिप्स जरूर देंगे जिससे आप किसी भी ईगोइस्टिक व्यक्ति से कैसे डील करें ये आपको पता लग जाएगा, और साथ के साथ आप अपनी जिंदगी में अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि एक रिलेशन में अगर ईगो आ जाता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं, और साथ के साथ ये जब आ जाता है तो इसे कम कैसे किया जा सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने भावना जी। वास्तव में कौन कितना इगोइस्टिक है
जी,
किसमें कितना अहंकार है, ये संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ही जाना जाता है
जी।
क्योंकि अगर किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो हमारा अहंकार अंदर पलता रहे वो शायद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए
जी।
लेकिन जब हम संबंधों की बात करते हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध है, वो सास बहू का संबंध है, वो भाई बहन का संबंध है, या वो एक मित्र मित्र का संबंध
जी,
जहां पर ये ईगो आ जाए वहां उन संबंधों में खटास आ जाती है। जब पति ये समझे कि मैं ही सब कुछ हूँ
जी,
और पत्नी क्या करती है, मैं ही चलाता हूँ घर, या मैं ही सुपीरियर हूँ
जी,
जहाँ पत्नी ये समझे कि मैं ही ज्यादा त्याग और बलिदान करती हूँ, पति क्या करता है, वहाँ संबंधों में जो खटास है वो तो आप जानते ही हैं
जी।
जब सास और बहू में कुछ ऐसी रिलेशन आ जाए, एक सास ये समझे कि मैं इस घर की धुरी रह चुकी हूँ, मेरा ईगो सबसे बड़ा है, ये कौन है कल की छोकरी जो मेरे सामने जबान चला रही है, तो वहाँ के संबंध कैसे बन सकते हैं ये हम सभी जान सकते हैं। मित्र और मित्र में अगर ऐसा संबंध आ जाए, कहीं पैसे का ईगो आ जाए, कहीं शक्ति का ईगो आ जाए, तो क्या हाल होगा, ये हमारे विद्वानों ने तो बहुत अच्छी तरह से बताया है
जी।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ईर्ष्या और अहंकार छोड़ दो, एक होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो, आज मानव जाति को इसकी बहुत आवश्यकता है
जी। हाँ,
वास्तव में जब तक अहम हमारे आड़े आएगा तब तक हमारे संबंधों में मिठास नहीं आ सकती
जी।
इसलिए अहंकार को दूर रखकर ये समझिए कि हमारा संबंध क्या है, हम एक दूसरे के लिए सामाजिक दायित्व क्या है, पारिवारिक दायित्व क्या है, राजनीतिक दायित्व क्या है, जब तक हम ये सब नहीं समझेंगे तब तक हम अपने संबंधों को सुचारू रूप से बना के नहीं रख सकते।
एक और सवाल जो हमेशा उठता है वो ये है कि क्या ईगो का कोई भी लेना देना पैसे से है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पैसे का और ईगो का बहुत बड़ा साथ होता है। जब इंसान धनवान हो जाता है तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, यानी अहंकार आ जाता है, फिर चाहे वो रिलेशंस हो, जैसे कि मिसेस किलम ने बताया कि जब एक पत्नी पति से ज्यादा कमाने लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। अगर एक पति पति से ज्यादा कमा रहा है तो उसे ये लगता है कि मैं इस परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी मिसेस सविता जी से कि क्या ईगो का कोई भी लेना देना पैसे से है।
भावना जी, ईगो का पैसे से बहुत गहरा संबंध है। देखिए, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है, ऐशो आराम की चीजें आ जाती हैं, तो वो रिश्तों की अहमियत को भूल जाता है। ये ना कि हमारी फिल्मों में दिखाया गया है, ये वैसे भी वास्तविक जीवन में भी हम अपने नियमित जीवन में भी देखते हैं
जी।
एक भाई ज्यादा अमीर है, वो गरीब भाई को पूछना नहीं चाहता, यहाँ तक कि ब्याह शादियों में भी उसे बुलाने में अपनी तोहीन समझता
जी।
है, वो भूल जाता है इस भाई के साथ हमने बचपन में धमा चौकड़ी मनाई थी, इकट्ठे हम पले भरे हैं
जी।
इसी तरह मैंने ऐसे देखा है कि जो अमीर बेटे हैं, बेटे बहुएं अपने गरीब माता पिता को कभी तो वो पीछे जो आउट हाउस है बाग के पीछे उसमें छोड़ देते हैं, या ज्यादा अपने फ्रेंड्स के सामने नहीं लाना चाहते कि माँ बाप हमारे गरीब हैं और हम अमीर हो गए हैं, जबकि पता है कि समय के साथ साथ पैसा भी हाथ का मैल है, वो चला जाएगा
जी।
इसी तरह रिश्तों में अगर हम छोटे छोटे शब्दों को पकड़कर, तुमने मुझे ये कहा, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मजा चखाऊंगा, इन छोटे छोटे शब्दों को हम महत्व दें और जो रिश्ता है उसको महत्व ना दें। मैं अभी भी कहूंगी, अगर आप एक तरफ कड़वे शब्द किसी ने गुस्से में कह दिए वो रखें, और दूसरे पलड़े में अगर आप रिश्ते को रखें तो रिश्ते का पलड़ा अभी भी भारी होगा।
बिल्कुल आपने ठीक कहा।
और माँ अगर गुस्से में आपको कुछ कह देती है, कई जवान बच्चे तो उसमें भी ईगो बना लेते हैं
जी।
आजकल आप अखबार पढ़िए, आपको हैरानी होगी कि माँ ने बेटे को कुछ कह दिया और उसकी इतनी बड़ी ईगो थी कि उसने जाके सुसाइड कर ली कि आपने मुझे कहा कैसे, मतलब आज जो लोगों की सोच है वो बिल्कुल बदल चुकी है
जी।
तो आज समय है बच्चों को ईगो के बारे में समझाने का, उनको थोड़ा धर्म की ओर झुकाने का, और सबसे बड़ी बात ये बताने का कि हम सब में एक ही आत्मा है, हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हमें आपस में ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों का महत्व अब भी बहुत अधिक है बजाय इसके इस ईगो का।
स्वस्थ अहम जो है वो भी बहुत जरूरी है
जी।
किसी की आगे विकास के लिए, प्रगति के लिए वो जरूरी है, ये समझाना आवश्यक है कि वो आवश्यक है, लेकिन उस अहम को कहीं आप नेगेटिव रूप में ना लें, कहीं केवल शो ऑफ के लिए, कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं लें, क्योंकि वहाँ पर प्रेम का संबंध ज्यादा जरूरी है। तभी रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
बिल्कुल भावना जी, यहाँ पर स्वाभिमान और ईगो, इसमें कई बार हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हमें अपने बच्चों को बताना है कि आपको स्वाभिमानी होना है, स्वाभिमानी होना बहुत जरूरी है
जी।
लेकिन ईगोइस्ट नहीं होना। संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है जिसका मैं अर्थ में आपको बताना चाहूंगी कि पांव की धूल को भी अगर आप ठोकर मारते हैं, वो जब तक उठकर आपके कपड़े गंदे नहीं कर लेती, वो जमीन पर वापस नहीं शांत होके बैठती। तो यदि आपको कुछ बुरे शब्द करता है, कहता है कोई, कुछ कड़वे शब्द कहता है जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आपको स्वाभिमानी होना चाहिए, आपको बिल्कुल उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि मैं ये सब नहीं सहूंगा
जी।
लेकिन अगर आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी आप उससे बात नहीं करते या उसको डीग्रेडिट करते रहते हैं इंग्लिश में, जिसे कहते हैं डीग्रेशन करना, तो ये आपका अहंकार है। तो अपने बच्चों को शुरू से ही, मैं लिसनर्स को कहना चाहूंगी, अभिभावकों को कहना चाहूंगी, शुरू से ही बच्चों को कहानियों के माध्यम से या वैसे भी किसी किसी एग्जाम्पल के थ्रू उनको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क बताएं।
बिल्कुल ठीक कहा मिसेस सविता सियाल ने कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो का एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है दोनों के बीच में, और कहां पर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होकर ईगो बन जाता है ये आपको भी पता नहीं चलता है। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ के साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी बनाए रखें, लेकिन दूसरों को कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि वो हर्ट महसूस हो। भाई एक तीन वर्ड का ये एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि आज के टाइम में सिर्फ ईगो के आसपास ही घूमती है। कोई ईगो के कारण दूसरों पर अत्याचार कर रहा है और बाकी लोग उस ईगो के कारण अत्याचार सह रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है और इसके क्या नुकसान होते हैं, ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी मिसेस इंदिरा किलम से।
अगर आप नुकसान की बात समझते हैं तो वास्तव में नुकसान तो इसके बहुत से हैं
जी,
इसमें कोई शक नहीं है। ये संबंधों में दरार डालता है, ये मनुष्य की अपनी प्रगति में रुकावट डालता है, ये मनुष्य को नए कुछ भी सीखने से रोकता है, क्योंकि जीवन में नया सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये उससे उसे रोकता है
जी।
जब उसको ये अहम हो जाए कि मुझे तो सब पता है
जी,
मैं तो सब जानता हूँ, तो वो नई चीज कभी नहीं सीख सकता
जी,
क्योंकि लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलना चाहिए, लेकिन अहंकार के आड़े आते ही हम उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं
जी।
अगर हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति देखें, अहंकार के नाश के बिना, अहंकार को छोड़े बिना, वो तो संभव है ही नहीं
जी।
बिल्कुल भी संभव नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करना। अब मनुष्य को ये जो अहंकार आता है, ये उसको एक सबसे बड़ी जो एक उसमें मैं सीख नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी उसको बुरी बात की तरफ ले जाता है, वो ये कि वो दूसरों के दोष ढूंढने लगता है
जी,
और अपने दोषों को जानता ही नहीं है
जी।
उसको सिर्फ लगता है दूसरा दोषी है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा। वो कभी अपने आप को आंकता परखता जांचता है ही नहीं, क्योंकि उसे हमेशा ये लगता है मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। तो ये दोष सबसे बड़ा दोष है इस व्यक्ति का जो अहंकारी है, कि वो अपने आप को कभी दूसरे के नजरिए से नहीं देखता
जी।
आंखें बंद करके अपने आप को केवल अपने ही नजरिए से देखना चाहता
जी। जैसे कि मिसेस किलम ने बताया कि अक्सर जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं उनके साथ परेशानी ये होती है कि उनका ये मानना होता है कि भाई वो बिल्कुल ठीक है और सारा जमाना बिल्कुल गलत, और इसीलिए वो दूसरों की गलतियां ढूंढते रह जाते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जो सिर्फ आपकी चापलूसी करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि जो आपका अच्छा चाहते हैं वो तो आपकी ईगो के कारण कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान है इसके अलावा और क्या परेशानियाँ आ सकती है कि इगोइस्टिक इंसान के जिंदगी में? जानती हूँ सविता सियाल जी से।
अन्ना जी, इगोइस्ट व्यक्ति एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल अकेला खड़ा होता है, जैसा कि आपने कहा कि उसके मित्र जो होते हैं, जो वास्तविक मित्र होते हैं, वो उसे छोड़ जाते हैं और इसके अतिरिक्त वो अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है। क्योंकि अगर आप इगोइस्ट हैं, आप कड़वी बात बोलेंगे क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, तो वो जो रिस्पेक्ट है दूसरों के प्रति वो नहीं होती, और जब आप उनको हर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रति वैर भाव रखते हैं।
जी,
अगर हम इतिहास का उदाहरण लें तो रावण में ईगो थी, उनकी पत्नी उन्हें बार बार समझा रही थी कि वो वापिस कर दें सीता माता को, लेकिन उनकी ईगो थी कि मैं किसी की क्यों सुनूं।
जी,
और इसी तरह कहते हैं कि जो इगोइस्ट आदमी है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने हर चीज अपने आप उपलब्ध कर ली है और मैं अब कुछ, मुझे और गुंजाइश नहीं है।
जी,
देखिए हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में ईगो की वजह से जो बिल्कुल शादियां टूटती हैं, अगर वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तो ये बिल्कुल शादी टूटने से बच सकती है और कई घर उजड़ने से बच सकते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ कोई भी इस चीज को रियलाइज करके पहले सॉरी बोल देते हैं। देखिए सॉरी भी कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द बहुत बड़ी मुसीबतों से आपको बचा देता है।
जी,
तो इसलिए इगोइस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ ये एक तरह की खुदकशी है अगर आप इगोइस्ट हैं।
जी,
क्योंकि जो इगोइस्ट व्यक्ति हैं वो कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। और यहाँ फिर मुझे एक रुबाई याद आ रही है, हमारे डायरेक्टर रेडियो मानव रचना के गंभीर साहब, वो लिखते हैं अहम वालों के घर बसा नहीं करते।
जी, जी।
जैसा कि आपने बोला कि रिश्ते बहुत से टूटते हैं, तलाक होते हैं इसी वजह से, अहम वालों के घर बसा नहीं करते, दाग दामन में लिए दूसरों पे हंसा नहीं करते, चाहत वाले तो रंजिश को प्यार से धोते हैं, बेवजह दूसरों पर ताने कसा नहीं करते।
जी,
तो इसलिए इगोइस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा अवगुण है।
और मुझे तो ये लगता है कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि भाई हमारे अंदर ईगो आ गया है, फिर चाहे वो कोई भी कारण हो, बहुत सारी अटेंशन आपको मिलती हो, बहुत ज्यादा पैम्परिंग आपको मिली हो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी कला है जो औरों में नहीं है और आपने ये सोच लिया कि भाई मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं ईगो का जन्म यहाँ पर हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, आपको सब कुछ धुंधला नजर आता है, क्योंकि आप बाकी सारी दुनिया को अपने से छोटा मानने लग जाते हैं और लोगों को आप समझते हैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, ये मेरे तक कैसे पहुंच सकते हैं। और इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कभी भी हम अकेले, कभी भी ऊपर यानी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम अकेले नहीं होते हैं, कभी ना कभी तो आपको वापस नीचे आना होता है। इसीलिए इस ईगो को छोड़कर अगर आप जिंदगी में देखें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। और इस बात पर एक ही रुबाई मुझे याद आती है जो हमारे डायरेक्टर रेडियो मानव रचना मुकेश गंभीर साहब की है, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है, अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने, गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है।
क्या बात है।
तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जिंदगी में अगर हमारे अंदर कोई भी एक अच्छा टैलेंट है तो उसको ईगो ना बनने दें और उसे सिर्फ एक अप्रिसिएशन ही मानकर छोड़ दें। फिलहाल इसी बात पर लेना चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी मिसेस सविता सियाल और मिसेस इंदिरा किलमका की वो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आई और हमारे साथ इतना बेहतरीन डिस्कशन किया।
धन्यवाद भावना जी।
थैंक यू।
और दोस्तों आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव।